यूनिवर्सिटी जाने से पहले वेद ने शिवांशा से यही कहा था कि पहले वो यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। लेकिन शिवांशा का एडमिशन फॉर्म लेकर वेद सीधा घर की तरफ ले रहा था। वेद का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ लग रहा था। ऊपर से उसने यूनिवर्सिटी में शिवांशा से थोड़ा सख्त लहजे में बात की थी, जिसके बाद शिवांशा के उसे कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवांशा बिल्कुल चुप थी और नर्वस होकर अपने साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों में पकड़कर उससे खेल रही थी। ड्राइविंग करते वक्त वेद की नज़र उसकी तरफ गई तो उसने सार्कास्टिक अंदाज में अपनी आंखें घुमाती थीं। कुछ कहना है तो सीधे सीधे कहो, तुम्हारी ये हरकतें मुझे इरिटेट कर रही हैं, वेद सपाट लहजे में बोला। क्या? शिवांशा हल्का सा चौंक गई थी। बोलो क्या कहना है, इस तरह कपड़ों के साथ खेलना बंद करो, वेद ने दोबारा पूछा। वो आपने कहा था ना कि हम हमारी शादी रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, हम तो घर जा रहे हैं, शिवांशा ने हिचकिचाकर कहा। हाँ, क्योंकि हम शादी रजिस्टर करने नहीं बल्कि रजिस्टर्ड मैरिज करने जा रहे थे और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। प्रतीक से मेरी बात हुई थी और उसने एक हफ्ते का टाइम दिया है, वेद ने जवाब दिया। शिवांशा ने हल्के से सिर हिला दिया था और फिर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। थोड़ा रुकने के बाद उसने वेद की तरफ देखकर धीमी आवाज में पूछा, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वो मैंने अपना नाम गलती से शिवांशा ठाकुर बता दिया था, क्या आप उस वजह से नाराज हैं? शिवांशा धीमी आवाज में बोली, उसकी नजरें नीची थीं। वो बस एक छोटी सी लापरवाही थी और मुझे पता है तुम आगे से ख्याल रखोगी, वेद ने इतना ही कहा। तो फिर आप चुप क्यों हैं? क्या मुझसे कोई और गलती हो गई? शिवांशा ने दोबारा पूछा। वेद की चुप्पी उसे खल रही थी और उसे यही लग रहा था कि वेद की इस खामोशी के पीछे का कारण वो है, जबकि सच उससे पूरी तरह अलग था। वेद शिवांशा को लेकर गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसके पास अरमान का मैसेज आया था। लीला और नव्यांशी में आज जो भी बहस हुई थी उसके बारे में अरमान ने वेद को सब कुछ बता दिया था। समय से पहले ही लीला और देविक्ष उनके रिश्ते के बारे में जान चुके थे और वेद को इस वक्त ये चिंता सता रही थी कि लीला अगला कदम उठाने में देर नहीं लगाएगी। वेद को लीला से किसी बात का डर नहीं था, बस उसे शिवांशा की परवाह थी, जो राजावत फैमिली के सामने आते ही बुरी तरह हड़बड़ा जाती थी। वेद अभी भी बिल्कुल चुप था और अरमान के मैसेज के बारे में सोच रहा था। शिवांशा ने कांपते हाथों से वेद के हाथ पर अपना हाथ रखा और हिम्मत करके कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है, आप ज़्यादा देर तक बाहर थे तो थक गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है शिवांशा, और ओवर थिंकिंग करना बंद करो, वेद ने हल्का चिढ़कर कहा, जिस पर शिवांशा ने तुरंत अपना हाथ वेद के हाथ से अलग कर लिया था। शिवांशा ने सिर्फ अपना हाथ ही वेद के हाथ से नहीं हटाया था, वो उससे थोड़ा दूर खिसक गई थी और उसका चेहरा भी दूसरी तरफ था। वेद ने अपनी आंखों को एक पल के लिए कसकर बंद किया और उसे एहसास हुआ कि अपनी परेशानी में उसने शिवांशा के साथ काफी बेरुखी से बात की है। जब मैं परेशान होता हूं तो कोई मुझसे बात करता है या कोई सवाल पूछता है तो मुझे इरिटेशन फील होता है, तो फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो, वेद ने उसे शांत लहजे में समझाया। शिवांशा ने धीरे से हाँ कह दिया था। वो जानती तक नहीं थी कि वेद इस वक्त परेशान था, तो उसकी वजह शिवांशा ही थी। वेद मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, मैंने ये सोचा था कि तुम्हें हमेशा राजावत फैमिली से दूर रखूंगा। नव्यांशी के लिए अरमान मुझे पहले से ही पसंद था, तो ये सिचुएशन कभी ना कभी आनी ही थी। सब कुछ काफी जल्दी में हो गया, समझ नहीं आ रहा तुम्हें उन लोगों के सामने जाने के लिए कैसे तैयार करूं। वेद काफी कश्मकश में आ गया था, ना तो वो नव्यांशी का दिल तोड़ सकता था और ना ही राजावत फैमिली की वजह से शिवांशा को खतरे में डाल सकता था। कुछ ही देर में चौहान पैलेस आ गया था। वेद ने शिवांशा को उतरने को कहा और बोला, अच्छा तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ और भी काम है। लेकिन आपकी तबीयत खराब है और आप पहले से ही बाहर थे, वंश भैया को पता चला तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा होंगे, शिवांशा ने मासूमियत से कहा। उसका चेहरा देखकर वेद का मन किया कि वो उसे अपने सीने से लगाए और प्यार से सहलाकर कहे कि उसके होते हुए कोई शिवांशा को कुछ नहीं कह सकता, फिर चाहे वो उसके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। पर अफसोस, वेद उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। उसने धीमी आवाज में इतना ही कहा, मैंने प्रतीक को कॉल कर दिया है, वो बस पहुंचता ही होगा, अंदर जाओ और एडमिशन फॉर्म भर लेना। शिवांशा को आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला क्योंकि प्रतीक वहां पर पहुंच गया था। शिवांशा को खुद का ख्याल रखने को बोलकर प्रतीक के साथ वेद वहां से चला गया था। शिवांशा दूर से उन्हें जाते हुए देख रही थी। क्या कुछ हुआ है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं? सुबह तो मुझे हिम्मत दे रहे थे कि ये सब कुछ संभाल लेंगे। अगर अरमान भाई और नवी दीदी का रिश्ता बना तो भी मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और इतनी देर में खुद पता नहीं किस बात को लेकर टेंशन ले रहे हैं, शिवांशा ने खुद से बड़बड़ाकर कहा और अंदर चली गई थी। वेद का डर गलत नहीं था। अगर लीला को नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के बारे में पता चल गया था तो वो इस मौके का फायदा उठाने का एक भी अवसर जाने नहीं देने वाली थी। शाम के लगभग 6 बजे के करीब लीला कुछ हाउस हेल्पर को लेकर चौहान पैलेस पहुंची। लीला के हाथ में शगुन का सामान था। हालांकि वेद के मिले इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया था, पर इस बार लीला गुस्सा नहीं हुई थी। वो मुस्कुराकर बोली, आज मैं शगुन के सामान के साथ यहाँ आई हूँ और दोनों परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम क्या चाहते हो कि तुम यहाँ मुझे रोककर वेद के गुस्से का शिकार होना चाहते हो? मैं नव्यांशी के लिए शगुन लेकर आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ भी करने से पहले उन्होंने वेद को कॉल किया और वो खुद हैरान थे कि वेद ने ही लीला को अंदर आने की इजाज़त दी थी। आप अंदर जा सकती हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने सर झुकाकर कहा। लीला के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो शगुन के सामान के साथ अंदर जाने लगी। अंदर बढ़ते हुए वो मन ही मन बोली, तो तुम्हें पहले से ही उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता है? किसने सोचा था कि तुम खुद मुझे अपने घर बुलाने पर मजबूर हो जाओगे वेद सिंह चौहान? और अब जब मेरे कदम इस घर में पड़ रहे हैं तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी वो नकली पत्नी इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। लीला अंदर पहुंच गई थी लेकिन घर का कोई भी सदस्य आसपास नजर नहीं आ रहा था। घर में कोई गेस्ट आता था तब रानी ही उसे देखने के लिए जाती थी। अपने सामने लीला को देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान रह गई। ऊपर से उसका चेहरा और बाकी लोगों के हाथ में पकड़े सामान से स्थिति कुछ और ही लग रही थी। आप यहाँ इस सामान के साथ क्या कर रही हैं? कोई घर पर नहीं है, लगता है आप गलत जगह आ गई हैं, रानी ने हल्का हिचकिचाकर कहा। पिछली बार लीला जब भी घर में आई थी और उसके साथ जो सुलूक हुआ था वो रानी ने अपनी आंखों से देखा था। रानी की आंखों में कहीं भी लीला के लिए इज्जत नजर नहीं आ रही थी। मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती हूँ, क्या इस घर के मालिकों में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है? लीला ने ताव दिखाते हुए कहा और वो वहीं सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गई थी। उसका जवाब सुनकर रानी की मुट्ठियां कस गई थीं, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो लीला को कुछ कह सके। ऊपर से घर में कोई और बड़ा मौजूद भी नहीं था।
शिवांशा भाभी घर पर ही हैं, मैं उन्हें बुला देती हूँ, रानी ने जवाब दिया और वो जाने को हुई तभी लीला जोर से हंस पड़ी थी। मैंने घर के मालिकों में से किसी को बुलाने को कहा है, वो तो खुद एक नौकरानी है, उसकी हैसियत तुमसे भी ज्यादा नीचे है और वो मुझसे बात करने के लायक नहीं है, लीला ने पूरे घमंड के साथ कहा। रानी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन अगले ही पल लीला ने अपने तेवर बदलते हुए कहा, ठीक है उसे ही बुला लो, आखिरकार चाय पानी देने का काम नौकरों का ही होता है, और हाँ उसे मत बताना कि मैं आई हूँ, बोल देना कोई मेहमान आया है। रानी ने हल्के से सिर हिलाया और ऊपर जाने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, कोई ये सौरत का मुंह क्यों नहीं तोड़ देता है? मुझे समझ नहीं आता सिक्योरिटी गार्ड ने इसे अंदर आने की इजाज़त कैसे दे दी, क्या उनकी वेद भैया से बात नहीं हुई? ये इस तरह शिवांशा भाभी की बेइज्जती कैसे कर सकती है? बस भैया घर आ जाएं और फिर इस औरत को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालें, तब सुकून आएगा। रानी अपने ख्यालों में खोई हुई चल रही थी कि तभी वो सीढ़ियों में शिवांशा से टकरा गई थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शिवांशा ने तुरंत पूछा। मैं आप ही को बुलाने जा रही थी, भगवान के लिए नीचे चलिए भाभी, और मैं उस औरत को कुछ नहीं कह सकती, तो आप ही उस औरत का मुंह बंद कीजिए, हो सके तो उसका मुंह ही तोड़ दीजिए, कोई इतना बदमिजाज कैसे हो सकता है? रानी गुस्से में बोली। ठीक है मैं देखती हूँ कौन आया है, शिवांशा ने जवाब दिया और नीचे जाने लगी। जैसे ही नीचे पहुंचकर शिवांशा ने लीला को अपने सामने देखा तो एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, तो वहीं लीला के चेहरे पर मनोरंजक मुस्कुराहट थी। आज वेद शिवांशा के आसपास भी नहीं था और ऐसे में लीला को शिवांशा से निपटने का अच्छा मौका मिला था। लीला अपनी जगह से खड़ी हुई और शिवांशा की तरफ बढ़ने लगी। वहीं शिवांशा ने डर के मारे अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया था और घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। शिवांशा का दिल डर के मारे जोर से धड़क रहा था और उसे एक एक करके लीला के अत्याचार याद आने लगे थे। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। लीला उसके पास पहुंचने में कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि तभी अचानक वेद उनके बीच में आकर खड़ा हो गया था। वेद का सहारा पाकर शिवांशा उसके पीछे छुपने लगी थी। वो पूरी तरह उसके पीछे जाती उससे पहले वेद ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे आगे की तरफ खींच लिया था। वेद की इस हरकत पर शिवांशा अभी हैरान रह गई थी, लेकिन तभी वेद हल्का सा मुस्कुराया और लीला से बोला, वेलकम मिसेज राजावत, वैसे नया हेयर स्टाइल काफ़ी सूट कर रहा है आपको। लीला की मुट्ठियां कस गई थीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। लीला ने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब में कहा, अब जब हमारा रिश्ता बनने वाला है तो तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल से लेकर मेरा चेहरा तक पसंद आने लगेगा। वैसे मैं शगुन लेकर आई थी, आखिरकार तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू जो बनने वाली है, मैं तो बस देर नहीं करना चाहती और यही चाहती हूँ कि इसी हफ्ते दोनों बच्चों की शादी हो जाए। जैसे ही लीला की बात खत्म हुई, वेद के साथ आए हुए आराध्या और वंश पूरी तरह चौंक गए थे। उन्हें पता तक नहीं था कि आखिर लीला मिव्यांशी को अपने घर की बहू क्यों बता रही थी। एक हफ्ता कुछ ज्यादा ही लेट नहीं है मिसेज राजावत, वेद तंज भरे लहजे में बोला, मेरे हिसाब से 3 दिन काफी होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई, वंश जल्दी से वेद के पास आकर बोला, आप नव्यांशी की शादी की बात कर रहे हैं और वो भी अगले 3 दिनों में, आपको नहीं लगता कि हमें इस डिसीजन में इन्वॉल्व होने का हक है? ये बात तो तुम्हें मुझे नहीं मिसेज राजावत को कहनी चाहिए वंश, कि नव्यांशी से जुड़े फैसले लेने का हक हमें है, ना कि उन्हें, जो मुंह उठाकर यहाँ शगुन के सामान के साथ एक हफ्ते में शादी करवाने का बोलने चली आई।
वेद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ सख्त थी और उसकी बातों में छुपे ताने को वहां हर कोई समझ सकता था। लीला को यही लगा था कि वो अरमान और नव्यांशी के रिश्ते के बहाने वेद को ब्लैकमेल कर सकती है, शिवांशा को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके सामने वेद सिंह चौहान खड़ा था, चौहान फैमिली की ढाल, जिसके होते हुए लीला बेशक भले ही उनके घर की दहलीज को लांग गई थी, लेकिन उसके रहते किसी को चोट पहुंचाना उसके बस की बात ही नहीं थी। भाई, इस लीला को ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी बेइज्जती कराने का बहुत मजा आता है, और ये क्यों भूल जाती है कि इसके सामने वेद है, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं जो ये अपने इरादे लेकर चौहान फैमिली को तोड़ देगी। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।